ये आकाशवाणी है। अब आप चारू सक्सेना से समाचार सुनिए। भारत और लाओ पीपल्स डेमोक्रेटिक रिपब्लिकल पीडीआर ने आज 6 सहमति पत्रों और समझौते पर हस्ताक्षर किए, जिनमें रक्षा सहयोग, सीमा शुल्क, ऑडियो विजुअल और धरोहर का संरक्षण शामिल है। भारत ने भारत संयुक्त राष्ट्र विकास भागीदारी कोष के माध्यम से लाओ में पोषण सुरक्षा के साथ खाद्य मजबूती की परियोजना में सहायता देने के लिए 10 लाख अमेरिकी डॉलर की मदद उपलब्ध कराने का भी निर्णय किया है। लाओ की राजधानी व्यंजन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और लाओ की प्रधानमंत्री सुनोकिया सिफंडोन की उपस्थिति में सहमति ज्ञापनों का आदान प्रदान किया गया। लाओ की यात्रा के दूसरे दिन श्री मोदी ने लाओ के राष्ट्रपति थोंगलाउन सिसलोक से आज व्यंजन में मुलाकात की। प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति को आसियान सम्मेलन और पूर्वी एशिया सम्मेलन के सफल आयोजन की बधाई दी। श्री मोदी ने लाओ के प्रधानमंत्री के साथ व्यंजन में द्विपक्षीय वार्ता की। दोनों नेताओं ने विकास भागीदारी, क्षमता निर्माण, आपदा प्रबंधन, नवीनीकरणीय ऊर्जा, धरोहर संरक्षण, आर्थिक संबंध, रक्षा सहयोग और आम जनता के आपसी संबंधों जैसे मुद्दों पर चर्चा की। बैठक के बाद प्रधानमंत्री स्वदेश लौट आए हैं। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुक्त, समावेशी और समृद्ध हिंद प्रशांत क्षेत्र के महत्व पर बल दिया। श्री मोदी ने कहा कि नियम आधारित हिंद प्रशांत क्षेत्र पूरे क्षेत्र की शांति और प्रगति के लिए महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा, दक्षिण चीन सागर क्षेत्र की शांति, सुरक्षा और स्थिरता पूरे हिंद प्रशांत क्षेत्र के हित में होगी। प्रधानमंत्री ने आज लाओ की राजधानी व्यंजन में 19वें पूर्वी एशियाई शिखर सम्मेलन को संबोधित किया। श्री मोदी ने दुनिया के विभिन्न क्षेत्रों में चल रहे हिंसक संघर्षों पर चिंता व्यक्त की। प्रधानमंत्री ने सभी देशों की संप्रभुता, क्षेत्रीय अखंडता और अंतर्राष्ट्रीय नियमों का सम्मान करने पर भी बल दिया। प्रधानमंत्री ने तूफानी यागी से प्रभावित लोगों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करते हुए कहा कि भारत ने ऑपरेशन सद्भाव के अंतर्गत मानवीय सहायता प्रदान की है। भारत ने लेबनान की वर्तमान स्थिति पर चिंता व्यक्त की है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि भारत की स्थिति पर बारीकी से नजर है और क्षेत्र में बिगड़ती सुरक्षा स्थिति पर चिंतित हैं। मंत्रालय ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र का सभी को सम्मान करना चाहिए। भारत ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों की सुरक्षा और उसके आदेशों का पालन करने के लिए उचित कदम उठाए जाने चाहिए। इस बीच इसराइल ने कहा कि पश्चिमी तट स्थित नूर शम्स शरणार्थी शिविर में फिलिस्तीनी आतंकवादी समूह इस्लामिक जिहाद के शीर्ष कमांडर मोहम्मद अब्दुल को मार गिराया है। अब्दुल्ला क्षेत्र में हमले की योजना बनाने और हाल के महीनों में कई हमलों में शामिल होने के लिए जिम्मेदार है। भारतीय नौसेना नवाचार और स्वदेशीकरण सम्मेलन स्वावलंबन 2024 का तीसरा संस्करण 28 और 29 अक्टूबर को नई दिल्ली में होगा। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि सम्मेलन में नवाचार और स्वदेशीकरण प्रयास को नई और पर्याप्त गति मिलने की उम्मीद है। मंत्रालय ने कहा कि स्वावलंबन के पिछले 2 संस्करणों में भारतीय नौसेना को भारतीय उद्योग से 2000 से अधिक प्रस्ताव प्राप्त हुए। सेना ने T-90 भीष्म टैंक का नया संस्करण तैयार किया है। आत्मनिर्भरता की दिशा में ये एक महत्वपूर्ण कदम है। वर्ष 2003 से मुख्य युद्धक टैंक T-90 भीष्म अपनी मारक क्षमता, गति और सुरक्षा के लिए जाना जाता है। टैंक का नया संस्करण और अधिक शक्तिशाली तथा घातक है। भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों, गैर बैंकिंग कंपनियों सहित सभी भुगतान सेवा प्रदाताओं को डिजिटल भुगतान सेवा में दिव्यांगजनों की सुविधा का ध्यान रखने का निर्देश दिया है। बैंक ने कहा है कि भुगतान सेवा प्रदाता डिजिटल भुगतान प्रणाली में दिव्यांग अनुकूल आवश्यक बदलाव करें। रिजर्व बैंक ने यह भी कहा कि वित्त मंत्रालय के 2 फरवरी 2024 को जारी मानक और दिशा निर्देश का सभी भुगतान सेवा प्रदाता कंपनी पालन करें। श्री नोएल टाटा को टाटा समूह के सहयोगी टाटा ट्रस्ट का निर्विरोध अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। श्री रतन टाटा के देहांत के बाद आज बोर्ड की बैठक में ये निर्णय लिया गया। श्री रतन टाटा का बुधवार को 86 वर्ष की आयु में निधन हो गया था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।